नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। विदेश मंत्री एस जयशंकर नेपाल के अपने समकक्ष के साथ सातवें नेपाल भारत संयुक्त आयोग की बैठक के सह अध्यक्षता के लिए दो दिवसीय दौरे पर बृहस्पतिवार को यहां पहुंचे। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को होने वाली इस बैठक के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समग्र स्थिति की समीक्षा करेंगे। वर्ष 2024 में जयशंकर की ये पहली विदेश यात्रा है। जयशंकर नेपाल के अपने समकक्ष एनपी साउद के साथ भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की स्थापना 1997 में हुई थी और ये दोनों पक्षों को द्विपक्षीय साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए मंच प्रदान करता है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में कहा, नेपाल भारत की पड़ोस प्रथम नीति के तहत उसका महत्वपूर्ण भागीदार है। ये दौरा दो करीबी और मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों के बीच उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा को ध्यान में रखते हुए है। नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अमृत बहादुर रॉय के अनुसार, संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान नेपाल भारत संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। रॉय ने पहले पीटीआई भाषा को बताया, ये द्विपक्षीय बैठक मुख्य रूप से आने वाले दिनों में नेपाल भारत संबंधों को मजबूत करने और उनके बीच बेहतर होती साझेदारी के माध्यम से दोनों देशों के लिए अधिकतम लाभ उठाने पर केंद्रित होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल और प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि जयशंकर का नेपाल के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। इसराइल की मोसाद खुफिया सेवा के प्रमुख डेविड बर्निया ने बुधवार को संकल्प जताया कि एजेंसी हमास के हर उस सदस्य को चुन चुन कर मारेगी जो इसराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमले में शामिल था, फिर चाहे वो कहीं भी छिपा हो। बेरूत में एक संदिग्ध इजरायली हमले में फलस्तीनी चरमपंथी समूह के उप प्रमुख के मारे जाने के एक दिन बाद मोसाद प्रमुख ने यह बात कही। इसराइल ने चरमपंथी समूह के उप प्रमुख के हत्या से संबंधित खबरों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन डेविड बर्निया की प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता है कि इस हमले के पीछे मोसाद का ही हाथ है। उन्होंने 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में हुई हत्याओं के बाद के घटनाक्रमों का जिक्र किया, जब मोसाद के एजेंटों ने इसराइली खिलाड़ियों की हत्या में शामिल फलस्तीनी चरमपंथियों का पता लगाया और उन्हें मार डाला। लेबनान की राजधानी में हुए हमले में हमास के सबसे वरिष्ठ सदस्य सालेह अरोरी के मारे जाने के बाद हिजबुल्ला उग्रवादियों के साथ तनाव बढ़ने की आशंका के कारण बुधवार को इसराइल में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लगभग 3 महीने पहले गाजा में युद्ध छिड़ने के बाद अरोरी का मारा जाना हमास के लिए एक बड़ा झटका है। दक्षिणी बेरूत हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है और यहाँ पर हमला लेबनान सीमा पर जारी झड़प के युद्ध में तब्दील होने की आशंका को बढ़ा सकता है। हिजबुल्ला नेता हसन नसरल्ला ने बुधवार शाम को एक भाषण में अरोरी की हत्या का बदला लेने का वादा किया और अपने समूह के बयान को दोहराते हुए कहा कि वो अरोरी की हत्या पर चुप नहीं बैठेगा और बिना सजा दिए नहीं छोड़ेगा। हालांकि नसरल्ला ने इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया कि जवाब कब और किस रूप में दिया जाएगा। अमेरिका और 12 सहयोगी देशों ने बुधवार को होती विद्रोहियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो लाल सागर में जहाज़ों पर हमले बंद करें, अन्यथा संभावित सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें। गाजा में 19 दिसंबर से इसराइल हमास युद्ध के जवाब में यमन के आतंकवादियों ने कम से कम 23 हमले किए हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमले जारी रहने पर संभावित भागीदारी के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी देने से इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ईरान समर्थित हूतियों को अमेरिका और उसके सहयोगियों से एक और चेतावनी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सहयोगी देशों की ओर से बुधवार को हमलों की निंदा करते हुए जारी किए गए एक संयुक्त बयान के तुरंत बाद व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने नाम ना उजागर करने की शर्त पर इस बारे में जानकारी दी। बयान पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन ने हस्ताक्षर किए। इसके अलावा अमेरिका ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के हूथियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया और उनके वित्त पोषक ईरान को चेतावनी दी कि उसके पास विकल्प मौजूद है कि वो विद्रोहियों का समर्थन जारी रखे या नहीं। देशों ने कहा, अब हमारा संदेश स्पष्ट होना चाहिए, हम उन हमलों को तत्काल समाप्त करने और गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिए गए जहाज़ों और चालक दल को रिहा करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने कहा, अगर हूथी जीवन वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्र के महत्वपूर्ण जलमार्गों में वाणिज्य के मुक्त प्रवाह को खतरे में डालना जारी रखते हैं तो परिणाम भुगतने के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। हाल ही के हफ्तों में हुथियों ने लाल सागर में उन जहाज़ों पर हमलों का दावा किया है जिनके बारे में उनका कहना है कि वो या तो इसराइल से जुड़े हैं या इसराइली बंदरगाहों की ओर जा रहे थे। हुथियों का कहना है कि उनके हमलों का उद्देश्य गाजा पट्टी में इसराइली हवाई और ज़मीनी हमले को ख़त्म करना है जो दक्षिणी इसराइल में 7 अक्टूबर को फ़लस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के हमले के बाद शुरू हुआ था। अमेरिका की ओर से वर्ष 2020 में किए गए ड्रोन हमले में मारे गए एक प्रमुख ईरानी जनरल की स्मृति में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुए 2 बम धमाकों में कम से कम 95 लोगों की मौत हो गई। ईरानी अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इस हमले को ईरान में 1979 में हुई इस्लामी क्रांति के बाद सबसे घातक आतंकवादी हमला माना जा रहा है। अब तक इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। ईरान के नेताओं ने धमाकों के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने का संकल्प जताया। हमले में कम से कम 211 लोग घायल हो गए। ये धमाके ईरान के करमान शहर में हुए जो राजधानी तेहरान से 820 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इससे पहले हमले में कम से कम 103 लोगों के मारे जाने की सूचना दी गई थी, लेकिन अधिकारियों को महसूस हुआ कि कुछ मृतकों के नाम दोबारा दर्ज हैं, जिसके बाद उन्होंने संशोधित आंकड़ा जारी करते हुए मरने वालों की संख्या 95 बताई। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री बहरम इनोलाही ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि कई घायलों की स्थिति गंभीर है, ऐसे में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। ये धमाके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्दस फोर्स के प्रमुख रहे जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के 4 साल पूरे होने पर करमान में उनकी कब्र के करीब आयोजित एक कार्यक्रम में हुए। ईरान के सरकारी टेलीविजन और अधिकारियों ने हमले में बम धमाके होने की बात कही, हालांकि उन्होंने इस बारे में तत्काल विस्तार से कुछ नहीं बताया। ये हमले बेरूत में एक संदिग्ध इजरायली हमले में फलस्तीनी चरमपंथी समूह हमास के एक उप प्रमुख के मारे जाने के एक दिन बाद हुए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।